द्वितीय भाग साकेत के नामकरण के औचित्यानौचित्य का विवेचन या साकेत के नामकरण की सार्थकता अथवा साकेत के नामकरण की मौलिकता। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए नामकरण के विषय में लिखा है, कवेरवित्तस्य वा नामना नायकस्य इतरेस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तु। अर्थात महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर अथवा कथा वस्तु के आधार पर अथवा नायक या अन्य किसी प्रमुख पात्र के नाम पर होना चाहिए, किंतु प्रत्येक सर्ग का नाम उसके वर्ण विषय के आधार पर ही हो। काव्य शीर्षक केंद्रस्थ भावना का द्योतन करता है। इस आधार पर आधुनिक आचार्यों ने भी प्रमुख पात्र, घटना, मनोवृत्ति, समस्या एवं स्थान विशेष के आधार को ही नामकरण का आधार माना है। साकेत का नामकरण स्थान विशेष के आधार पर हुआ है, इसलिए कुछ विद्वान इस नाम को सार्थक नहीं मानते। इसकी अपेक्षा साकेत संताप, उर्मिला उत्ताप या केवल उर्मिला नाम अधिक उपयुक्त होता, जबकि इस काव्य में आरंभ से अंत तक उर्मिला पर कवि की प्रधान दृष्टि है, तो उसी आधार पर नामकरण होना चाहिए था। परंतु गुप्त जी ने उर्मिला को महत्व देना चाहा, व्यक्ति विशेष को नहीं। परंतु गुप्त जी ने स्थान को महत्व देना चाहा है, व्यक्ति विशेष को नहीं। व्यक्ति विशेष के रूप में वे संभवतः उर्मिला का महत्व स्वीकार नहीं करते, साकेत के एक पात्र के रूप में मानते हैं और साकेत उनके राम की क्रीड़ा भूमि है। उर्मिला पर उन्होंने विशेष ध्यान जरूर रखा है, पर इतनी प्रधानता नहीं दी कि वह राम सीता के चरित्र को भी आच्छादित कर ले। इसीलिए गुप्त जी ने साकेत नाम रखना ही ठीक समझा। श्री त्रिलोचन पांडे ने साकेत नाम की सार्थकता के पक्ष में तर्क दिया है। पॉइंट नंबर 1, इस काव्य की सभी घटनाओं का केंद्र साकेत है। प्रधान पात्र उर्मिला निरंतर यहाँ रही है। राम कथा का वर्णन करते हुए गुप्त जी साकेत छोड़कर कहीं नहीं गए। राम के अभिषेक की चर्चा, कैकेयी, रोष, गृह त्याग सब कुछ साकेत में ही हुआ। सूर्यवंशी राजाओं की कीर्ति गाथा, दशरथ का प्रसंग, धनुष यज्ञ की चर्चा स्वयं उर्मिला के मुख से कराई गई है। इस प्रकार बाहर जाने के भी अवसर आए, गुप्त जी ने साकेत में ही उनका विधान किया। उर्मिला अपने बाल्यकाल की स्मृति रूप में भी यही वर्णन करती है। अब भी वह वाटिका वहाँ पर बैठी, यह उर्मिला यहाँ, करुण कृति माँ विसूरति, गिरिजा भी वन मूर्ति घूरती, सुनती कितनी प्रसर्ग में, कर देती कुछ रंग भंग में, चुनती नरवृत्त मोद से, सुनती देव कथा विनोद से। दशम सर्ग से राम के वन गमन के उपरांत एक अवसर साकेत छोड़ने का और आया, जब भरत राम से मिलने चित्रकूट गए। यहाँ कवि को भी चित्रकूट जाना पड़ता है, अतः संपूर्ण नगर निवासियों, राजमाताओं को भी चित्रकूट ले गया। जहाँ निवासी रहेंगे वहाँ साकेत भी होगा। चल चपल कमल निज चित्रकूट चल देखे, प्रभुचरण चिन्ह पर सफल भाल लिपिलेखे, संप्रति साकेत समाज वहीं है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। इस प्रकार चित्रकूट में भी गुप्त जी ने साकेत नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ वृत्त शत्रुघ्न व हनुमान द्वारा, कुछ वशिष्ठ जी के योग द्वारा सुना व दिखा गया दिया गया है। केंद्र साकेत ही रहा है। पॉइंट नंबर टू, नवम सर्ग में वर्णित उर्मिला के विरह व्यथित जीवन की संपूर्ण घटनाएं साकेत में ही घटित हो रही हैं। पॉइंट नंबर थ्री, कवि ने शेष राम कथा साकेत भी ही घटित होते हुए दिखाया है। प्रथम तो दशम सर्ग में कवि ने साकेत के राजमहल में स्थित उर्मिला के मुख से सूर्यवंश के राजाओं की यशोगाथा जानकी मांडवी उर्मिला एवं श्रुतकीर्ति के जन्म तथा बचपन की क्रीड़ाएँ, राम की बाल क्रीड़ा, ताड़कावध, वाटिका में राम जानकी का मिलन, धनुष यज्ञ आदि से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन साकेत में ही कराया है। और फिर हनुमान के मुख से सीता हरण, राम सुग्रीव भेंट, राम की युद्ध यात्रा, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, लक्ष्मण शक्ति आदि से संबंधित समस्त घटनाओं का वर्णन साकेत में ही करा दिया है। तृतीय द्वादश सर्ग में आकर शेष रावण युद्ध, रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, राम का अयोध्या आगमन आदि सभी घटनाओं का वशिष्ठ जी द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के द्वारा साकेत में ही खड़े खड़े साकेतवासी देख लेते हैं, जैसे कोई चलचित्र में कोई रावण की घटनाएं देख रहा हो। इस तरह कवि ने राम कथा संबंधी समस्त घटनाओं का केंद्र साकेत बना दिया है, जो प्रमुख स्थान विशेष का नाम है, जिसमें संपूर्ण वर्ण विषय समाहित हैं, जो चित्ताकर्षक भी हैं और औत्सुक्य वृद्धि में भी सहायक हुआ है। इसी कारण इस काव्य का साकेत नाम पूर्णतया सार्थक है। केवल घटनाओं की रंगभूमि ही साकेत नहीं है। पॉइंट नंबर फोर, केवल घटनाओं की रंगभूमि ही साकेत नहीं है, कथा का अंत भी वहीं होता है। संपूर्ण घटनाओं का समाहार साकेत में किया गया है। 14 वर्ष के उपरांत राम लौट कर वहीं आते हैं और उर्मिला लक्ष्मण का मिलन भी वहीं होता है। नयन नाथ क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया, प्रिय प्रिय हाँ आज ही वह दिन आया। पॉइंट नंबर फाइव, गुप्त जी ने अन्य कवियों की तरह स्थान के नाम पर इसका नाम रखा है, यथा कुरुक्षेत्र दिनकर जी ने रखा है। प्रमुख पात्र की दृष्टि से भी इस नाम की सार्थकता एवं औचित्य सिद्ध होता है। उर्मिला इस महाकाव्य की प्रमुखतया पात्र है, जो निरंतर साकेत में रही है। एक बार वह साकेत से बाहर निकली अवश्य है, पर सभी साकेतवासियों के साथ जहां वे चित्रकूट जाकर उसे भी साकेत बना देते हैं। स्वयं कवि ने इस बात को संकेत दिया है कि जो कथा साकेत से प्रारंभ होती है, उसका पर्यावसान भी साकेत में होता है। प्रथम सर्ग के आरंभ में भी कवि साकेत में प्रवेश करता है। बैठ आ मानस मारल सनाथ हो, भारवाही कंठ के की साथ हो, चल अयोध्या के लिए सजसाज तू, माँ मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू। इसी सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन होता है। सारी रात उनकी हास परिहास में बीतती है और अंत में राम भी अयोध्या ही आते हैं और यहीं पर पुनः लक्ष्मण तथा उर्मिला का मिलन होता है। लेकर मानो विश्व विरह उस अंतःपुर में, समा रहे थे एक दूसरे के वे उर्मे। श्री गुप्त जी साकेत के विषय में लिखा भी है, मैंने अपनी रचना का नाम साकेत रखा है, उसमें मुझे सबके दर्शन की सुविधा मिल गई है। उपर्युक्त सुविधा मुख्यतः उर्मिला की अनुभूति और अपनी रचना में कुछ नवीनता की इच्छा पर ही साकेत का अस्तित्व है। निष्कर्षतः देखा जाए तो मानस की के रूपांतरित कथानक को लेकर गुप्त जी ने इसको कुछ ऐसा नाम नहीं दिया जो ग्रंथ की घटनाओं पर प्रकाश डाल सके। न तो नायक के नाम पर ग्रंथ का नाम है, न कवि के नाम पर, और न इसका संबंध स्पष्ट रूप से ग्रंथ के कथानक से ही है। साकेत से केवल अयोध्या नगरी का आभास मिलता है। अयोध्या ये ग्रंथ की घटनाओं का मुख्य केंद्र है, इसलिए कवि ने इसका नाम यह उपयुक्त नाम समझा है। उर्मिला का विरह ताप, राम वनवास, दशरथ मित्र से शोकाकुल नगरी का उल्लेख ही साकेत से मुख्यतः संबंध रखता है। केवल साकेत नाम से न तो इन घटनाओं के विषय में हमें पूर्ण ज्ञान होता है और न साकेत नगरी की दीनहीन मर्माहत अवस्था का ही कुछ परिचय मिलता है। साकेत नाम रखने में कवि ने गलती नहीं की है, क्योंकि उसका मूल लक्ष्य तो राम कथा को वाणी देना था। फिर साकेत में राम समाहित हैं और राम में साकेत, अतः साकेत नाम उसके असली उद्देश्य के प्रणयन के अनुरूप है। यदि कोई त्रुटि है तो यही कि कवि कथा का संयोजक ठीक से नहीं कर पाया है, जिसे साकेत न तो राम कथा का ही ग्रंथ बन सका है और स्वतंत्र दृष्टि से उर्मिला की व्यथा कथा कहने वाला मौलिक ग्रंथ ही। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। द एंड।